हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। बेटा जी, अब तक तुमने मोहब्बत के जिन रंगों का स्वाद देखा है, वो सब स्वादिष्ट थे, दिल को लुभाने वाले थे। पर अब तुम्हारे सामने मोहब्बत का वो रंग आएगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि मोहब्बत एक आग का दरिया है, जिसमें कि उस पार अगर पहुंचना भी है तो पहले उसके अंदर डूबना होगा। और आग के दरिया में डूबने का मतलब समझते हो ना, इसके लिए बहुत हिम्मत और ताकत चाहिए, प्रारब्ध जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। मैं आपकी बात ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ मामा जी, अर्जुन ने नासमझी में कहा। प्रारब्ध जी के होंठ सोचने वाले अंदाज में सिकुड़े और फिर अगले ही पल उन्होंने बोलना शुरू किया। इस मोहब्बत के दो पहलू होते हैं। पहला, जिसके अंदर इतना आकर्षण होता है इंसान ना चाहते हुए भी कब उसके आकर्षण में डूब जाता है उसको पता नहीं चलता। पता तब चलता है जब उसके बगैर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, उसको देखे बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती। ये जिंदगी के सबसे रंगीन दिन होते हैं। यहाँ पर ना जमाने की फिक्र होती है और ना ही किसी के जज्बातों की, बस महबूब की नज़रों से दिन दिन होता है और रात रात होती है। पर इस मोहब्बत का दूसरा पहलू ये भी है कि ये इतनी अंधी भी होती है कि कुछ भी सोचने और समझने नहीं देती। मैंने कहा ना कि बस महबूब की नज़रों से दिन दिन होता है और रात रात होती है। जब तक पहले पहलू है हम रहते हैं, तब तक तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही दूसरा पहलू आंखों के सामने आता है, सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। पहले पहलू में फरहाद पत्थर का सीना फाड़ के दूध की नदी बहा देता है, पर दूसरे पहलू में सोनी, जो कि एक कुम्हार की बेटी थी, जिसने सारी जिंदगी जिसने मिट्टी के घड़े ही बनाए थे, वो भी अपनी मोहब्बत के पीछे पीछे दरिया में कच्ची मिट्टी का घड़ा लेकर कूद जाती है। उसे इतना भी ध्यान नहीं रहता है कि कच्ची मिट्टी का घड़ा दरिया में तुरंत ही डूब जाएगा, और वैसे भी उस समय में जब दरिया में उफान आया हो। एक कुम्हार की बेटी से ऐसी बेवकूफ़ी की आशा तो किस्मत किसी ने की नहीं होगी जिसे पक्के घड़े और कच्चे घड़े में अंतर ना पता हो। और यही तुम्हारे साथ हुआ है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है जो कि आंखों को नहीं, दिमाग को अंधा कर देती है। इसीलिए मोहब्बत की देवी को अंधी कहा गया है। वो सामने आँख का दरिया देखती है, पर फिर भी उसे वो फूल लगते हैं, ये बात जानते हुए भी कि जैसे ही वो अपना पहला कदम उधर बढ़ाता है, वो आग में झुलस कर रह जाएगा। इंसान उधर कदम बढ़ा देता है। इसमें इंसान की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत ऐसी होती है, और मोहब्बत तो कभी गलत होती ही नहीं है, प्रारब्ध जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मामा जी, प्रारब्ध जी की सारी बात सुनने और समझने के बाद अर्जुन के दिल में एक डर सा बैठ गया था। वो अच्छी तरह से समझ गया था कि प्रारब्ध जी उसे क्या समझाना चाहते थे। उसे अब अपनी चिंता नहीं थी, बल्कि शुचि की चिंता हो रही थी, आने वाले कल की चिंता हो रही थी। इसलिए उसने प्रारब्ध जी को पुकारा। अर्जुन की पुकार सुनकर प्रारब्ध जी ने अपना सर उठाया। तुम चिंता मत करो, मामा हूँ तुम्हारा, कृष्ण नहीं हूँ जो कि अपने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अकेला छोड़ दूँ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, इतना भरोसा रखना, प्रारब्ध जी ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो द्वापर का युग था, ये कलयुग है, और तुम मेरे अर्जुन। देखते हैं सारी बात जानने के बाद आदित्य की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, उसके बाद ही अगला स्टेप लेंगे। तब तक के लिए हमें तो शांति ही लगानी होगी, पर तब तक के लिए तुम सावधान रहना, समझदारी से काम लेना, और अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मिले या फिर बात, तो उस समय जल्दीबाजी में खुद से कोई कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे आकर जरूर कहना। मैं अपनी सारी संपत्ति हार सकता हूँ, पर अपना गुरूर नहीं, और मेरे बच्चे ही मेरा गुरूर है, प्रारब्ध जी ने अपने दोनों हाथ अर्जुन के कंधे पर जमाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। अर्जुन मुस्कुरा दिया। पर शुचि, दिल के डर ने अर्जुन के होठों पर एक नाम ला ही दिया था। इसके लिए मैं खुद राणा भाई साहब से पहले बात करूंगा, और जरूरत पड़ी तो आशुतोष से भी करूंगा, क्योंकि वो आदित्य तो कोई भी बात सुनने से रहा, समझना तो बहुत दूर की बात है। मैं इस मैटर पर डायरेक्ट उसी से बात करना सही समझता, पर तुम तो जानते ही हो, उससे तो बात करने से का मैसेज भी छोड़ना मतलब बिगड़े हुए साड़ के पास लाल कपड़ा दिखाकर छोड़ना होगा। बिना बात सुने समझे तुरंत उधर से लड़ते हुए चला आएगा, इसीलिए फिलहाल में तो चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का ही मैटर उलझा हुआ है। इधर से तुम्हारे पापा हैं तो उधर से आशुतोष, अभी तो इन्हीं दोनों के बीच बहुत बड़ी जंग बाकी है, प्रारब्ध जी ने अफसोस से अपना सर हिलाते हुए कहा। तुम निश्चिंत रहो, मैं खुद इस मैटर को देखूंगा। कुछ देर तक सोचने के बाद, एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचने के बाद प्रारब्ध जी ने अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहा। अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। अब इस मोहब्बत की जंग में अर्जुन को एक सहारा मिल गया था। अर्जुन के इस मोहब्बत के रथ के सारथी प्रारब्ध जी बनने को तैयार थे, पर सम्राट और आंचल अलग ही मुसीबत में थे। उनके लिए किसी भी गाड़ी के सारथी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। उन्हें अब तक उस सड़क से निकलने के लिए कोई लिफ्ट नहीं मिली थी। जाने इस मोहब्बत का क्या अंजाम होने वाला था। जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड तक। स्टे ट्यून्ड।